ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया आग्रह। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया जोर। कक्षा 11 की पढ़ाई आषाढ़ 1 गति से शुरू करने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का निर्देश। और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बीजिंग में भेंटवार्ता। अब समाचार विस्तार से। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविदा गौतम ने दोनों विधेयक प्रस्तुत किए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक शून्य और विशेष समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रेस स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है और इस अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता। उन्होंने सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और सुझावों को मंत्रालय गंभीरता से लेने तथा सुझावों के आधार पर मंत्रालय के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल की क्षमता वृद्धि कर उसे अधिक प्रभावकारी और सशक्त बनाते हुए नेपाल के मीडिया क्षेत्र को स्वच्छ जवाबदेह और गौरवपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मंत्री तिमल सिन्हा ने यह भी कहा कि नेपाल के दुर्गम तथा अधिक व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्रों तक टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच बढ़ाने के लिए बजट एवं कार्यक्रम सहित व्यवस्था करना सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। इसी तरह सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि देश के भीतर पर्याप्त रोजगार सृजन कर युवाओं को स्वदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। मंत्री यादव ने कहा कि केवल वैदेशिक रोजगार को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना ही नहीं बल्कि देश के भीतर पर्याप्त रोजगार सृजित कर युवा शक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी मंत्रालय की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैदेशिक रोजगार के नाम पर होने वाले शोषण, ठगी और अनियमितताओं के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति है। श्रम मंत्री यादव ने सदन को जानकारी दी कि भविष्य में ठगी नियंत्रण और आप्रवासन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाने के लिए वैदेशिक रोजगार की पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड करने की नीति अपनाई जाएगी। इससे पहले आज की बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से आग्रह किया था। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसदों द्वारा प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर सभामुख अर्याल ने विरोध की शैली को असंसदीय बताते हुए व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। बैठक में सभामुख अर्याल से समय लेकर श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्कराज राय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को संसद के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए तथा उनके द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सीमा, सहकारी संस्थाओं की राशि वापस, सुकुम्बासी प्रबंधन सहित आम जनता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर वे प्रधानमंत्री और मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनने के कारण उन्हें विरोध करना पड़ रहा है। बैठक में सांसदों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में आम नागरिकों की पहुंच बढ़ाने, सुकुम्बासी और बेघर लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने सहित विभिन्न विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र में स्थानीय सरकार का महत्व और गरिमा व्यापक तथा गहन है। आज संसरी के कोशीगांव पालिका में निर्मित लौकही सिटी हॉल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि जनता की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं तथा जनचाहना के अनुरूप विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाकर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्य मान्यता और आदर्शों को सशक्त बनाना आवश्यक है। स्थानीय तह को जनता के सबसे निकट की सरकार बताते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा प्रदान करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्य का संचालन करना स्थानीय सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की बैठक में सांसदों ने निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थों के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए खाद्य गुणवत्ता परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। समिति की आज हुई बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट निर्माण संबंधी विषय पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ हुई चर्चा में सांसदों ने आयात को निरुत्साहित करते हुए किसानों के लिए उपयुक्त अनुदान की व्यवस्था करने तथा कृषि और खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने कक्षा 11 की पढ़ाई आगामी आषाढ़ 1 गति से शुरू करने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने शैक्षिक सत्र 2082 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE का परिणाम प्रकाशित हो जाने के संदर्भ में कक्षा 11 की पढ़ाई आगामी आषाढ़ 1 गति से संचालित करने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय अंतर्गत शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केंद्र ने आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइयों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। बांके की निर्मला कुर्मी के अपहरण बंधक बनाकर रखने तथा हत्या संबंधी मामले की निष्पक्ष जांच सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे अधिकारकर्मी रूबी खान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5 सूत्रीय सहमति हुई है। बांके के नेपालगंज स्थित संजीवनी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपालगंज अस्पताल में अनशनरत खान ने सरकार की ओर से वार्ता के लिए भेजी गई विशेष टोली के साथ सहमति होने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। सहमति के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय बांके में 20 जैत 2077 को दर्ज निर्मला कुर्मी के अपहरण बंधक तथा हत्या संबंधी मामले में अब तक हुए अनुसंधान का अध्ययन कर यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निर्मला कुर्मी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत रूबी खान तथा अन्य महिला अधिकारकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रहरी और प्रशासन कार्यालय को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को निरंतरता मिलेगी। आज महोत्तरी के वर्दीवास में आयोजित मध्य प्रदेश स्तरीय भेला एवं जरा अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति थापा ने पार्टी पंक्ति को कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हर गतिविधि को सामाजिक आंदोलन से जोड़कर आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिक्रमित 442 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुर के अनुसार वर्षों से अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली करने तथा करवाने के लिए संबंधित वन कार्यालयों द्वारा सूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के सभी 8 जिलों से 442 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया यात्रा के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। इस साल पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे ये भी पता चलता है कि मौजूदा माहौल में चीन कितना अहम बन गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन इस संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बैठक में उस नई गैस पाइपलाइन पर खास फोकस होगा जो हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर तक नेचुरल गैस चीन तक पहुंचा सकती है। हाल के महीनों में कई वैश्विक नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मकसद से चीन का दौरा कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया आग्रह। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ ने दिया जोर। कक्षा 11 की पढ़ाई आसार 1 गति से शुरू करने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का निर्देश। और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बीजिंग में भेंटवार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।